તારીખ 6/3/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 50.
इस कथन में टीकाकाराचार्य ने श्यारवाद से वस्तु का स्वरूप बताया है, ऐसा जानना है। वस्तु अनेकांतात्मक है और ऐसा अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसा निजपद को साधने के लिए कहा है। अनेकांत सिर्फ अनेकांतात्मक वस्तु को बताने का ही सिर्फ अभिप्राय नहीं है, किंतु इस अनेकांत द्वारा सम्यक एकांत रूप जो निजात्मक पद है उसका अवलंबन लेने को भी उपदेश में आ गया। अगर ऐसा नहीं हो तो जीव अनादि से पर्याय वृत्ति होने से वर्तमान अवस्था के रागादि विभाग में उसके पक्ष में खड़ा है, और सही जगह पे खड़ा नहीं है। सही जगह पे नहीं खड़ा होने से उनको सही जगह पे लाने के लिए वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने पर भी उसके आगे उपदेश दिया जाता है कि तुम जिस जगह खड़े हो वो गलत जगह है, यहाँ से निकल करके तुम अपने स्वस्थान में अपने स्वरूप में अपना अड्डा जमाओ। किसी को ही यथार्थ से आवाज कहते हैं, ऐसा होते तो यथार्थ साथ से आवाज कह सकते हैं। सिर्फ जानकारी से अन्य धर्मों को जाने, इसलिए से आवाज को जान लिया, ये बात यथार्थता में नहीं है। सही होने पर भी यथार्थता में नहीं है। यहां पर यह समझना चाहिए, आगे के पैराग्राफ से नहीं होगी, कि वे नहीं है यह श्रुत ज्ञान परमात्मा मनुष्य है, नहीं किसे कहते हैं कि जो प्रमाण रूप श्रुत ज्ञान है उसके एक अंश को, इसके एक अवयव को नहीं कहते हैं। सुत ज्ञान वस्तु ज्ञान परोक्ष बतलाता है, सुत ज्ञान आगे परोक्षम मति और रूप जो पहले हैं बोलने में तो परोक्ष है, बाकी के दिन अन्य प्रत्यक्षम अन्य, बाकी के दिन प्रत्यक्ष है। सुख ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नैदी परोक्ष ही बतलाता है। आत्मस्वरूप को यह नैदी परोक्ष ही बतलाता है। परोक्ष कैसे, ऐसे तो कहेंगे कि अनुभव से तो प्रत्यक्ष है, वेदन प्रत्यक्ष की यहाँ चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ वस्तु के अनंत गुण को, अनंत धर्म को जैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है वैसा नहीं जानता, और उस गुण धर्म में प्रदेश है वो तो दिखाई नहीं देता सब ज्ञान को, जबकि केवल ज्ञान को तो प्रदेश दिखाई देता है, ये दृष्टांत है इसका। इसलिए जानकारी के हिसाब से शुद्ध ज्ञान भले सम्यक शुद्ध ज्ञान हो फिर भी वो परोक्ष ज्ञान है, और वेदन की अपेक्षा से उसको अध्यात्म के प्रकरण में परोक्ष कहा है वो बात अलग है, वो अपेक्षा अलग है। इसलिए जननयोगी आत्मा को परोक्ष ही बतलाता है, जननयोगी भी आत्मा को परोक्ष बतलाता है, प्रत्यक्ष बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय बद स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय बद स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित, तो उसका भेद निकाल करके अब कहते हैं कि चैतन्य शक्ति मात्र है, वो भी ले लिया पांच भेदों को गौण करके एक चैतन्य शक्ति मात्र आत्मा है। चेतना से आत्मा कहीं में कहीं सावधान रहता है, सावधानी हुआ ही करती है, चाहे वो सावधानी पर में हो या सावधानी सो में हो, सावधानी जहाँ सुख का निश्चय पड़ा है, कर लिया है, कर चुका है, वहाँ जीव की सावधानी अनिवार्य रूप से हुई जाती है।
स्वप्न दशा में भी वही सावधानी रहती
है, स्वप्न दशा में भी कहीं भी निरंतर जीव पर में सावधान है, यही दर्शन मोह का लक्षण है। ठीक, जीव पर में सावधान है यही दर्शन मोह का लक्षण है, जबकि दर्शन मोह का अभाव होगा तो जीव स्व में सावधान होगा, वो भी स्वप्न दशा में भी। ठीक, ज्ञानी होने पर स्वप्न में भी स्व में सावधान होगा, पर में सावधान होगा। बाह्य प्रवृत्ति जितने भी प्रभाव है, बाह्य प्रवृत्ति तो अपनी सावधानी रख करके होता है, छोड़ करके नहीं, यही ज्ञान दशा है। और जिसको पूर्ण सावधानी नहीं है, एकांत पर में सावधान रहा ही करता है, निरंतर स्वप्न में भी ऊपर में साधन, क्यों? क्योंकि सुख का निश्चय वहां बना बना रखा है, ये मेरे सुख के कारण है। ये करके सावधानी जीव को स्वरूप सन्मुख नहीं होने देगी, क्या पर पदार्थ की रागादि भावों की जो सावधानी है ये स्वसन्मुख होने बाधक है, रोधक है, और जो ज्ञानी स्वरूप में सावधान है उसको पर सन्मुखता में पूरे के पूरे नहीं आने देने में स्वरूप सावधानी ही कार्य करते हैं, पर स्वरूप बाहर जाते हैं फिर भी पूरे के पूरे उलझते हैं। ऐसा आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है, चेतना का काम क्या काम है? चेतना जो चेतता है उसको चेतक कहने में आता है, जो चेतता है सावधान होता है उसको चेतक कहने में आया है, और चैतन्य शक्ति वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है। ये जो शक्ति है सभी शक्तियां है वो तो शक्ति रूप होने से परोक्ष माने क्या, कि शक्ति रूप है, ये इतना ही कहना है। वास्तव में शक्ति में कोई पर्याय में परोक्षता होती है, ऐसी परोक्षता शक्ति में नहीं है। तो प्रभु क्या अर्थ करेंगे? जय श्री ने ऐसा लिखा तो शक्ति मैंने चैतन्य शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, परोक्ष है मैंने प्रकट नहीं है। जैसे अवस्था उत्पाद में प्रकट होती है ऐसे उतने आप मर्यादित अर्थ लेना है, क्योंकि चैतन्य शक्ति है वो स्वरूप से सहज प्रत्यक्ष है। ये बात नहीं होता है। 11-12 का यहाँ तो प्रगटता की अपेक्षा से बात चल रही है और उसकी व्यक्ति मैंने प्रगटता उसकी व्यक्ति है। कर्म संयोग से मति सूत्र आदि ज्ञान रूप है। कर्म संयोग से इसकी परिणाम अनुभव से नहीं करते हैं, क्योंकि परोक्षता प्रत्यक्षता का विषय चलता है और आगम पद्धति से चलता है, अध्यात्म पद्धति से नहीं। आगम पद्धति में सर्व परमाणु का आश्रय लिया जाता है, अपेक्षा ली जाती है। अध्यात्म में आत्मा की अपेक्षा और अवलंबन लिया जाता है। दोनों कथन की पद्धति अलग अलग है। जहां दो पद्धति से शास्त्र कथन चलता हो उसे यहाँ उसी पद्धति से समझना, वरना परस्पर विरोध दिखाई देगा और समाधान होगा नहीं। कहते हैं कि चैतन्य शक्ति की व्यक्ति कर्म संयोग से यानी कर्म के निमित्त से देखे तो वृत्ति सूत्र आदि क्षोक्षम ज्ञान रूप है। कर्म संयोग में क्षोक्षम लेना, कर्म का क्षोक्षम का निमित्त पड़ता है और ज्ञान में क्षोक्षम भाव में बोला जाता है। जितना भी उगाड़ है उसको क्षोक्षम भाव कहते हैं। उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति सूत्रादि ज्ञान रूप है। ये चर्चा चलती है कि क्षोक्षम ज्ञान हो तो इंद्रिय ज्ञान ही होता है और अनुभव को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, और अनुभव में मति सूत्र के अलावा तीसरा तो कोई है नहीं, न केवल है न अवधि में न पर्याय है। पांच भेद के अलावा छठा भेद तो सूत्र ज्ञान का है नहीं, ज्ञान का है नहीं ज्ञान के पर्याय का। लेकिन ये पांचों वेद कर्म सापेक्ष बताए गए हैं तो पांचों वेद आगम विवक्षा के विवरण में आए हैं। अध्यात्म का विवरण तो अलग ढंग से है, अलग पद्धति से होते हैं। ये बात अलग
है। ज्ञान ने उपा दीजिए, ज्ञान ने उपा दीजिए।
हाँ, 204-205 में लिया ना निर्जराधिकार में कि ये कर्म उपाधि है। सूक्ष्म और क्षय दो प्रकार के ज्ञान के पर्याय होते हैं। चार ज्ञान है सूक्ष्म भाव रूप में और केवल ज्ञान क्षय भाव रूप में, पर वो पांचों को कर्म की उपाधि लगी है। कर्म से उसका वर्णन किया जाता है, वर्णन करना है ज्ञान का और बीच में कर्म को ले आते हैं, इसलिए उसको आगम पद्धति से कथन किया ऐसा कहने में आता है। ये बड़ा सिद्धांत ने दिया है अपने परमार्थ रचने का, मैं मोक्ष मत बता सकते कि आगम पद्धति का आधार कर्म परमाणु है और अध्यात्म पद्धति का आधार आत्मा है। कौन से कथन कहाँ चलते हैं ये नहीं समझे तो परस्पर विरोध लगे बिना रहेंगे। यह प्रसंचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। त्रयोदशन मति सूत्र ज्ञान को अनुभव गोचर होने से वेदन की अपेक्षा से उसको प्रसंचित प्रत्यक्ष में कहने में आया है, स्वामी गुरु को प्रत्यक्ष कहने में आता
है।
कंजूसी नहीं की है, वास्तव में तो जैसा है वैसा बताया है, क्योंकि केवल ज्ञान सकल सकल प्रत्यक्ष है। इसलिए ये जो अनुभव है वो अंश अंश आंशिक रूप में है। तो आंशिक रूप है मैंने थोड़ा है, थोड़ा का मतलब कथन चीज है,
थोड़ा मतलब कथनचित का आश्रय क्या है?
कथनचित का यह अल्पता सूचक है, अल्पता है, पूर्ण
ऐसी बात नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसी बात नहीं,
नहीं ऐसी बात नहीं है,
बहुत महत्वपूर्ण है।
महत्व तो उतना है कि एक क्षणार्ध का अनुभव जो है वो अनंत भव का छेद करता है, खत्म करता है, अनंत भव के बीज को बांध देता है, जला देता है। उसकी महिमा गई है, लेकिन यहाँ तो उसका तो परिमाण दिखाना है। क्या जैसे केवल ज्ञान में जो संवेदन रूप अनुभव है और नीचे के गुण स्थान में जो ससंवेदन रूप अनुभव है, जाति तो दोनों की एक ही है, केवल ज्ञान की जाति पर बुद्धि स्वरूप ज्ञान की ससंवेदन रूप जाति में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी एक है। हम बात रहे क्वांटिटी की, तो नीचे के गुण स्थान में अल्पत्व बहुत समय से और तेरहवें गुण स्थान में अनंत स्वसंवेदन होने से उसका अंतर दिखाई देने के लिए कथनचित अनुभव गोचर ऐसा बोला है, दूसरे कोई बात है नहीं। देखिए ऐसा तो बहुत आपको पकड़ेगा कि सम्यक दृष्टि के एक और से महिमा करते हैं आचार्य खुद भी, और दूसरे ओर से उसको विशेषण क्या लगाया, अविरत सम्यक दृष्टि, क्या ये भूषण है? अविरत परम बोलना ये क्या सम्यक दृष्टि का भूषण है क्या? नहीं दिखेगा, ऊपर ऊपर से नहीं दिखेगा। इसका स्पष्टीकरण दिया है टोडरमल जी साहब ने, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो गोमठ सार्थिका है उसमें उन्होंने ये दिया है कि सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के शास्त्रों में बोले गए हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और सर्वविरत सम्यक दृष्टि। ये वीरती के तीन भेद दिखाने के लिए सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि हमने कहा है। इसका मतलब यहाँ इसका कोई अवगुण दिखाने का हमारा अभिप्राय है ऐसा कृत्य मानना ऐसा स्पष्ट किया है। हमको तो ऊपर वाले गुण स्थान जैसी स्थिति नहीं है, पंचम छठे वाले उतना ही दिखाना है, लेकिन इसका मतलब कोई अवगुण दिखाना हम चाहते हैं ऐसा दृष्टिकोण से सभी दृष्टि को समझना चाहिए, स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसे कहीं कोई बात ऊपर से दिखाने में दृष्टिकोण ऊपर वाले का होता है, कोई बात नीचे से दिखाने का भी दृष्टिकोण होता है, तो बात परस्पर कभी विरुद्ध लग जाती है, लेकिन वैसा नहीं है, सही समझे तो वैसा नहीं है। उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति ज्ञान मति सुख ज्ञान आदि ज्ञान रूप है और कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है, और संपूर्ण केवल ज्ञान यद्यपि क्षतस्थ के प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्ध ने आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बदलाता है। देखो छदमस्तकों को केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान में छदमस्तकों को केवल ज्ञान का ज्ञान होता है। ये अंक गणित में नहीं बैठे ऐसी घटना है। केवल ज्ञान बहुत बड़ा है, अनंत 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 जिसका प्रकट सामर्थ्य है ऐसा केवल ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान बहुत इसके आगे अनंत के भाग में अल्प है। तो ये अल्प में बड़ी चीज कैसे समाई गई? कोई छोटे वर्तन में बड़ी चीज हम डाल सकते हैं, रख सकते हैं क्या? आ सकता है क्या कि नहीं आएगा? बड़ी चीज के लिए बड़ा वर्तन चाहिए, जैसे बक्सा होता है तो बड़ी चीज बड़ा, कोई बड़ी चीज के लिए बड़ा बक्सा रखना पड़ता है, छोटे बक्से में बड़ी चीज पैक होगी, लेकिन ये गणित यहाँ काम में नहीं आता है। ज्ञान तो ऐसा जीव का चमत्कारिक पर्याय है कि ये छोटा दिखने पर इसका काम बहुत बड़ा है,
सारा
विश्व आ जाता है। लेकिन हमारे आंख की जो रेंज है कितनी है, चना की दाल के टेबल देखते हैं ठीक ही बोलते हैं, और बड़े बड़े पहाड़ों को भी नाप लेते हैं, ये पहाड़ इतना ऊंचा होना चाहिए इतना दिखता है यहाँ से, और बड़े बड़े समुद्र को भी नापते हैं, हजारों फीट तक पानी 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 दिखता है, तो है तो उन्होंने वहां जाता भी नहीं क्या, अपने अपने रह करके उतना अपक्षोषण और उतनी जगह में से कितना बड़ा ज्ञान करता है। और जो पर्याय व्यक्त रूप नहीं है उसका रिसर्च करता है कि भौतिक विज्ञान में प्रकट है ही नहीं अवस्था, उसको प्रकट लाने के लिए ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, भूगल में जाएगी और जाए देना, यहाँ तो भूगल में जाता नहीं, फिर भी जान लेता है कि उसमें ऐसे गुणधर्म है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होगा। एक जमाना ऐसा था कि मिट्टी में तेल है वो कोई मान नहीं सकते, तिली में तेल हो सकता है लेकिन मिट्टी में तेल हो सकता है कोई मान सकते थे, अब करोड़ों टन तेल निकलता है मिट्टी में से, निकलता है जमीन में से तेल निकलता है, तो किसने जाना है मीटर में 3000 मीटर नीचे ऐसे निकालते हैं, कैसे पता चला कि यहाँ तेल पड़ा है, ज्ञान तो वहां गया नहीं, खुदा भी नहीं, खुदाई तो बाद में होती है, ज्ञान का चमत्कार है कि 3000 मीटर खोदने से यहाँ से तेल निकलने वाला है, उतना निकलेगा उतना निकलेगा करोड़ों तक निकलेगा, ये तो अल्प ज्ञान की उतनी शक्ति है पौधनी, ये ज्ञान अल्प मिथ्या ज्ञान है तो भी उतनी शक्ति है क्या, ये सभी कृष्ण का ज्ञान नहीं है, ये तो मिथ्या ज्ञान की उतनी ताकत है, ये चैतन्य का चमत्कार ज्ञान है, वो ज्ञान समीप होता है तो केवल ज्ञान को भी जान लेता है कि केवल ज्ञान कैसा होता है, मते शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, केवल ज्ञान का नाम आ जाता है, खुद है छोटा और केवल ज्ञान है बहुत बड़ा, इसमें जमीन पकड़ता है, देखिए भगवान की मूर्ति है निलेंद्र प्रतिमा, उसके दर्शन से दूसरे को स्वसंवेदन उत्पन्न होने का निमित्त है, क्यों कैसे कि अनंत स्वसंवेदन की यह मूर्ति है, केवल ज्ञान है ना प्रकट मान, तो अनंत स्वसंवेदन वहां प्रकट है, अगर जिसकी नजर में वो बात आती है उनको स्वसंवेदन चालू हो जाता है भीतर में, इसलिए इसकी स्थापना है। लास्ट टाइम में आया तो बात तो थोड़ी चली थी कि जिनेन्द्र दर्शन कैसे करना चाहिए, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, कि मुख्य बात स्वसंवेदन की उसमें नहीं है, उनका भगवान का अनंत स्वसंवेदन जिसको नजर आता है उसको अपने में स्वसंवेदन आविर्भूत होने लगता है, इसकी अनंत शांति दिखती है तो अपने में भी शांति के लहरें उठने लगती है, उसकी परिपूर्ण निरवशेष अंतर्मुखता दिखती है तो यहाँ भी अंतर्मुखता जो है तो होने लगती है, और उनकी अनंत प्रत्यक्षता जो दिखती है तो यहाँ भी स्वसंवेदन में प्रत्यक्षता आविर्भूत होने लगती है, जो चीज वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में भाषा में परिभाषा में वो चीज फिर दिखाई जाती है प्रतिमा द्वारा, क्या जैसे वर्ण को हम भाषा में पूरा पूरा दिखा नहीं सकते दर्शा नहीं सकते, लेकिन दिखाने में तो बराबर कलर को दिखा सकते हैं, चक्षु चक्षुन्द्रिय का विषय है, वर्ण है रंग कलर है वो कर्णेन्द्रिय का विषय भी, तो उसको सुनने से ज्ञान नहीं होता, रंग का ज्ञान वर्ण का ज्ञान सुनने से नहीं होता उतना दिखने से होता है, यानी दिखने से होता है वो चला जाएगा नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है, और सुनने वाला ज्ञान चला जाएगा, ऐसे भगवान के प्रति से जो आत्मज्ञान होता है वो आत्मज्ञान करने में कहते वो ज्ञान जो शास्त्र पढ़ने से जो नई ज्ञान आ रहे वो ज्ञान वहां आता है, शायद नहीं आ रहे क्यों कि शास्त्र में दिखाने की मर्यादा है, इससे ज्यादा उसके दिखाने में मर्यादा है। ये इतनी प्रतिष्ठा की धाम धूम क्यों, हाँ देव भी करते हैं अर्था करते हैं, यही कारण है कि बहुत बड़ा उसमें निमित्त पड़ा है कि जिसको आत्मज्ञान दर्शन मात्र से आत्मज्ञान हो जाए तो उसका अनंत भाव का छेद हो जाता है। इस तरह से दर्शन कराया गया है शास्त्रों में। अब ये कहते पूछ सकते हैं कि प्रश्न यह अपेक्षित है कि इनका संवेदन अगर हम कल्पना करें, कल्पना करते हैं ना, तो इधर हमको संवेदन कैसे हो सकता है, कल्पना नहीं करना है उसको विजुलाइज करना है, देखना है। कल्पना करना एक और परिणाम है और देखने का एक और परिणाम होता है। परिणाम दो तरह के होते हैं, जो कल्पना है वो वेदन को नहीं ला सकते, जबकि भाव भाषण है जो विजुलाइज होना है वो वेदन को उत्पन्न करने में निमित्त होता है। तो इसका हमें प्रैक्टिकल ज्ञान है कि कोई भी प्राणी मनुष्य हो स्त्रियंत हो अगर अशाता वेदने से बहुत पीड़ा में दिखा जा देखा जाता है, सुना जाता नहीं सुनने से नहीं आएगा इतना, क्योंकि देखा जाएगा तो देखने वाले को पीड़ा हो जाएगी, अरे रे उसको कुछ करो, उसकी पीड़ा शांत हो जाए ऐसा कुछ करो, उसको दवाई दे दो, उसको कुछ भी करो लेकिन उसको पीड़ा नहीं। अशाता वेदनी का वेदन भी अशाता का वेदन करा देता है तो अनंत स्व संवेदन के अल्प स्व संवेदन को नहीं कराएगा क्या, क्यों नहीं कराएगा, कैसे नहीं कराएगा, कैसे कराएगा वो प्रश्न नहीं है, अब कैसे नहीं कराएगा वो प्रश्न है। अब तो बात को यही दृष्टि से अगर देखने में आए तो बहुत कीमती है, मामूली तो बात नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में इसका बहुत बड़ा महत्व है प्रतिमा जी का, यही कारण है इसके पीछे मूल संज्ञा से नहीं चलना है, जो बात जैसी है वैसे इसकी गहराई में जाकर के अपने आप में उसका परिणमन करने से फायदा है। मूल संज्ञा से चलने से तो वैसे मूर्ति बना लेंगे, प्रतिष्ठा करा लेंगे, 25 लाख रुपए का खर्च दान समर्पण भी कर देंगे, लेकिन इससे कोई तो फायदा होने वाला नहीं।
प्रतिमा जी के विषय में अनंत स्व संवेदन का विषय डाल,
हाँ ठीक है, प्रतिमा अनंत प्रतिमा जी का निषेध करने से अनंत स्व संवेदन का निषेध अनजाने में हो जाता है, जान बुझ कर तो नहीं करे तो भी अनजाने में हो जाता है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्तक के प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्ध नए आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। कैसी घटना होगी कि यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, मुझे कहते थे कि केवल ज्ञान की लब्धि होगी, सम्यक ज्ञानी तो केवल ज्ञान की लब्धि है, बारह चौदह पूर्व तो उसके आगे कुछ नहीं है, ग्यारह चौदह पूर्व वाले जो बारह है वो तो इसके आगे अनंतवें भाग में है, ऐसी लब्धि सम्यक शुद्ध ज्ञानी को होती है।
गुरुदेव अपने अनुभव से कहते थे, गुरुदेव ये बात अपने अनुभव से कहते थे,
हाँ अपने अनुभव से कहते हैं, शास्त्र प्रमाण भी है इसका और अनुभव प्रमाण भी है, क्योंकि अनुभव में केवल ज्ञान का स्वरूप सम्यक दृष्टि जान लेते हैं, तो जान करके कहें कहें वो जान करके कहे थे ऐसी बात। तो इसलिए ऐसे समय ज्ञान की ग्रंथ ग्रंथों में बहुत महिमा गाई है। मुख्य नैना मुख्य नैन के हित से केवल ज्ञान वर्तता है, श्रद्धा अपेक्षा से केवल भविष्य काल नहीं लिया है, वर्तमान काल लिया है। तो परोक्ष बतलाता है, जब तक जीव इस समय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान शांत ज्ञान संधान नहीं होता। जब तक जीव इस नहीं से नहीं जानता, इस नहीं में शुद्ध नहीं से नहीं जानता आत्मा को, वहां तक उसको सम्यक संधान भी नहीं होता। देखो ज्ञान पूर्वक संधान आया उसको ज्ञान संधान नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्धि को प्रकट करके उपदेश किया है। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्धि को प्रकट करके उपदेश किया है, शुद्धि को बिना प्रकट के उपदेश नहीं किया है। प्रकट करके प्रकट बतलाया है, प्रकट करके भीतर में भी प्रकट किया और भाषा में भी उसकी प्रसिद्धि कर दी। यही करने लायक है, शुद्ध में ही प्रकट करने लायक है। श्री गुरु ने शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश किया है कि बद्ध स्पष्ट आदि पांच भावों से रही पूर्ण ज्ञान जन स्वभाव आत्मा को जानकर प्रदान करना चाहिए। क्या है इसलिए वजुष्ट आदि पांच भावों से रही कैसा, तो पूर्ण ज्ञान जन स्वभाव स्वरूप आत्मा उसको दान करके प्रदान करना चाहिए। पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए, ये दृढ़ का विषय है, शुद्ध दृढ़ स्वभाव है। मैं पर्याय जितना ही हूं, जैसे पर्याय है उतना ही हूं, मात्र पर्याय रूप अपने को अवधारण कर लेना यह पर्याय बुद्धि मिथ्या बुद्धि अज्ञान और मिथ्या स्वरूप है। जबकि पूर्ण ज्ञान जन स्वभाव में ऐसा ध्यान करके प्रधान प्रतीत करना भरोसे तो पर्याय बुद्धि का नाश होता है। इसलिए ऐसे पर्याय बुद्धि रहना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष को दिखाई नहीं देता, आपने बद स्पष्ट आदि आत्मा की बात किया लेकिन वो कोई प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता नहीं है, आत्मा आत्मा आप करते हैं लेकिन आत्मा है कहाँ? हमको तो रात का अनुभव होता है, शरीर दिखाई देता है और घटपट दिखा दो हमको, जब मानेंगे बिना देखे ऐसे मानने वाले हम नहीं है। किसी की भी नहीं माने, सर्वज्ञ भगवान कहे तो क्या हो गया, हम भी कोई कम नहीं है। नहीं मानता है भगवान के समो शरण में जाकर के नहीं माना है, तो भगवान की भी नहीं मानी तब तो भटका क्यों रोला संसार में, मुझे भगवान की नहीं मानी तब तो ठीक बात है। बात तो भगवान की है, प्रत्येक अभी जो है वही स्वर्गीय स्वर्गीय भगवान की है, कोई अंतर यही बात सर्व शरण में स्वर्गीय भगवान ने कही है और समय सारा शास्त्र में आचार्य ने गुरु ने कही है ज्ञानियों ने कही है, बात तो वही है स्वर्गीय भगवान की, लेकिन नहीं मानता है वो किसी के नहीं मानता है। नहीं माने। शास्त्र कहे तो भले कहे, गुरु कहे तो भले कहे, भगवान कहे तो भले कहे, हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसे माने। ऐसा किया है हमारे जीव ने, ऐसा अनंत बार किया है, अब ऐसा नहीं करे, यही सावधानी रखने की है। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना तो असत श्रद्धान है। जब प्रश्न पूछने वाला जानता है सत श्रद्धान को और असत श्रद्धान को भी जानता है तो ये तो असत श्रद्धान हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट करने में तो बराबर है। इसका उत्तर यह है कि देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मन है। कहा लेंगे पंडित जी, जैसे जी कहते हैं कि देखे हुए को मानना तो नास्तिक मत है, तो कृपा उन्होंने काफी तर्क दिया इस पर कि तुमने अपने दादा को नहीं देखा था लेकिन तेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे बाप का यह नाम है, तुमने नहीं देखा तो नहीं मान लो, बात चलने वाली नहीं है, मानना पड़ेगा तुझे। हाँ, और अपनी पीठ भी नहीं दिखती है, दिखती है क्या किसी को, यहाँ कितने बाल है या नहीं है, कोई दाग है या नहीं है, कुछ है क्या नहीं है, कि दिखता है क्या, दूसरा बताएगा तो आपको ये हुआ है, नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, देखे उतना ही माने। ये बात से व्यवहार भी चलने वाला नहीं है, निश्चय का तो धर्म का तो सवाल ही नहीं है, दुनियादारी भी चलने वाली नहीं है, जगत का व्यवहार नहीं चलता है। देखे हुए का ही सिद्धांत करना तो नास्तिक मत है, जबकि जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, अलग प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, तर्क प्रमाण है, न्याय प्रमाण है, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रमाण माने गए हैं और मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी आपत्ति आती है। जैन मत में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं, उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, परोक्ष चार प्रकार के जो परोक्ष प्रमाण है उसमें आगम प्रमाण परोक्ष प्रमाण है और उसका भेद शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं से जो कथन कहा वो तो मानना चाहिए और मान करके शुद्ध में वो प्रकट करना भी चाहिए तो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देगा, अनुभव से तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, जानने में भले कुछ बातें परोक्ष रह गई लेकिन अनुभव में तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। उसका भेद शुद्ध नहीं है, इस शुद्ध नहीं की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। शुद्धने के दृष्टिकोण को अंगीकार करके ऐसा ही शुद्ध आत्मा है ऐसा प्रतीत में लेना चाहिए। पहले विकल्प वाले ज्ञान में जाने और प्रतीत करें, विश्वास करें, प्रतीत में विश्वास करें, फिर अनुभव ज्ञान में जाने और निर्विकल प्रतीत भी करें, दोनों क्रम से बात होनी चाहिए। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए कि देखेंगे तो मानेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। तो बिजली के जो तार होते हैं उसमें करंट दिखाई नहीं देता है तो भी कोई स्पर्श करता नहीं है, करता है क्या? लिख दिया पावर वाले ने 440 वोल्ट का करंट यहाँ चलता है लेजर, हम तो देखेंगे तो मानेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसा चलता है कि मर जाएगा, तो नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे, उसमें मर जाएगा। दुनिया में बहुत सी अच्छी चीज है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन इसका अस्तित्व होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, इसका अस्तित्व होता है और मानना भी पड़ता है और इसका अस्तित्व अनुभव होकर होता है। तार को पकड़ेगा तो अनुभव हो जाएगा कि है कि नहीं है, तो पूरा पता चल जाएगा। इस तरह से यहाँ विस्तार से पंडित जयचंद जी ने इस गाथा पर बहुत प्रकार के स्पष्टीकरण देकर के विषय को स्पष्ट किया, बहुत सी बातें ध्यान में। तो क्या लेना है, 11 वर्ष लेना है या क्या विचार किया है? विषय भूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान के अनुभूति है। इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के स्वरूप काव्य कहते हैं। काव्य मैंने परस, परस का विषय क्या है उसका निर्देशन ये है, शुद्धमय के विषय रूप जो आत्मा है, आत्मा की अनुभूति कैसी है, शुद्धमय आत्मिका कहिए, शुद्धमय रूप आत्मा की अनुभूति अनुभव है, वो शुद्धमय स्वरूप है। और ये अनुभव में ज्ञान ज्ञान को अनुभव करता है, इसको ज्ञानानुभूति भी कहने में आई है। तीन विषय प्रस्तुत कर रखा है, आत्मानुभूति की शुद्ध आत्म का ज्ञानानुभूति में क्लेश आत्मा आत्मनि निवेश निष्प्रथम एक अवबोध मना समझता। इस प्रकार जो पूर्वकथित शुद्धनय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, पूर्वकथित मैंने चौदहवीं गाथा में भी यही कहा कि शुद्धनय से आत्मा अनुभव में आता है। कोई ऐसा माने कि अनुभव में नए ज्ञान नहीं है तो इसका यहाँ आचार्य महाराज ने उत्तर दे दिया है कि अनुभव में शुद्धनय वाला ज्ञान प्रवर्तित होता है। इस प्रकार जो पूर्व कथित मैंने 14 गाथा में कहा कि शुद्धमय स्वरूप जो आत्मा की अनुभूति है, तो वास्तव में आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो तो ज्ञान की अनुभूति है, ऐसा कहते हैं यहाँ। क्या क्या कहलाती है अनुभूति को आत्मा की अनुभूति? ये व्यवहार है, ये उपचार है, द्रव्य सामान्य पर पर्याय का उपचार है। वास्तव में ज्ञान को ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव रहता है। त्रिकाल्य सामान्य में तो अनुभव हो सकता ही नहीं है, वो तो शक्ति रूप तत्व है,
कारण कार्य रूप
जो अवलंबन भूत पदार्थ है उस पर उपचार किया गया है, अवलंबन के हिसाब से यहाँ उपचार किया गया है। ये सातवें विभक्ति है, छठी विभक्ति है, आधार अनेक सुमन, आधार के कारण से उपचार किया गया है। कभी संबंध के संबंध के कारण से उपचार किया जाता है, कभी आधार के कारण से किया जाता है, कभी कारण कार्य से किया जाता है, अनेक प्रकार के उपचार करने का भी कथन व्यवहार है। तो यहाँ आत्मा का अवलंबन है इसलिए आत्मा की अनुभूति बोला, लेकिन द्रव्य में अनुभव होता नहीं, अनुभव पर्याय में ही होता है। निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक यही परिस्थिति, यही वस्तु के परिणमन की मर्यादा है, इस मर्यादा का उल्लंघन कभी होता नहीं है। इस प्रकार जो पूर्वकथित सुखमय स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। वास्तवता से कहा कील शब्द से निकाला है, कील मैंने खरे खर, सब संस्कृत में कील शब्द है, कील मैंने खरे खर, खरे खर मैंने वास्तव में, निश्चय है, इसलिए उसको व्यवहार कहा, आत्मानुभूति को व्यवहार कहा और ज्ञानानुभूति को निश्चय कहा। कथन का आशय एक ही है, शब्द बदल जाता है तो अर्थ नहीं बदलता है, ऐसी बात है। शब्द में आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति दो प्रकार के शब्द हैं, आत्मा द्रव्य है तो ज्ञान पर्याय है। तो कहते हैं कहने का आशय एक रहता है, शब्द और शब्दार्थ अलग अलग होता है, लेकिन आशय एक होने से वचन विरुद्धता आती नहीं है, परस्पर विरोधता नहीं आती है, यही कारण है। जानकर मैंने ऐसा जानकर तथा आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके, ऐसा जानकर क्या करना है कि आत्मा में आत्मा को स्थापित करना है। आत्मा आत्मा में स्थापित नहीं था क्या? श्रद्धा ज्ञान में स्थापित कर दिया तो आत्मा को आत्मा में स्थापित कर दिया। श्रद्धा ने आत्मा को आत्मा में श्रद्धा में ले लिया और ज्ञान में आत्मा को आत्मा में जान लिया, तो श्रद्धा ज्ञान दोनों ने आत्मा को आत्मा में स्थापित कर दिया। ये अध्यात्म पद्धति है, उसमें द्रव्य पर्याय का भेद छाटा जाता नहीं, दोनों आत्मा ही है। नियम सार में लिया आर्थिक ज्ञान में कि जिसको द्रव्य की तीक्ष्ण दृष्टि है, परम काले नामक भाव को द्रव्य कहा है, जिसको द्रव्य की तीक्ष्ण दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, ऐसे आत्मा को, ऐसा आत्मा ही उपाधि है। क्या? आत्मा को आत्मा उपाधि है, पर्याय को आत्मा उपाधि है ऐसा नहीं कहा, पर्याय को द्रव्य उपाधि है ऐसा भी नहीं कहा। यह द्रव्यालिंग की शैली है, ये अध्यात्म की शैली है, दोनों शैली अलग अलग है। जहां भाव से आत्मीयता हो जाती है, वहां अंतर रहता तो उसको आत्मा है, अनुभूति ही आत्मा है, ऐसा क्यों कहा? अनुभूति को पर्याय है तो आत्मा क्यों कहते हैं? पर्याय को भी आत्मा अध्यात्म के कहने में आता है। धर्म दृष्टि की अलग बात है, देखो धर्म दृष्टि के विषय में तो पर्याय नहीं है, पर अध्यात्म के कथन में तो शुद्ध पर्याय सहित कथन किया जाता है। दोनों अध्यात्म का विषय है, ब्रह्म दृष्टि भी अध्यात्म का विषय है, और ऐसे शुद्ध पर्याय को साथ में लेकर उसको आत्मा कहना वो भी अध्यात्म का कथन है। अध्यात्म का तो कथन मात्र व्यवहार है, लेकिन दोनों शैली अलग अलग है, और दोनों की जो शैली है इसमें इस शैली से जो लाभ होने वाला है वही देखना है। इस शैली से क्या लाभ होता है, इस शैली से क्या लाभ होता है, जबकि शैली परस्पर विरुद्ध देखी जाती है। द्रव्य दृष्टि की ऐसी शैली है कि वो पर्याय को हे क्या करके, पर्याय से भिन्न द्रव्य स्वभाव को ही द्रव्य दृष्टि अवलंबन करती है, निषेध करते हैं। जबकि ज्ञान ऐसा, अध्यात्म ज्ञान ऐसा नहीं करता, अध्यात्म दृष्टि ऐसी करती है, अध्यात्म ज्ञान ऐसा नहीं करता। इसलिए तो ये वाद विवाद क्यों होता है, यही कारण है कि दृष्टि, दृष्टि की परिगमन करने की पद्धति क्या और उसको दिखाने की शैली क्या वचन में, और अध्यात्म ज्ञान की परिगमन करने की पद्धति क्या और उसको दिखाने की कथन शैली क्या, इसका स्पष्टीकरण नहीं होने से, समझ रहे हो, स्पष्ट नहीं होने से एक कथन के दूसरे कथन के सामने लड़ाते हुए विवाद में चले जाते हैं, ये गड़बड़ बड़ी हो जाती है। ऐसा होना चाहिए क्योंकि विषय स्पष्ट है, निरागम में ये सब बात बहुत स्पष्ट है, इसलिए स्पष्ट है कि दृष्टि है वो अपने जिसको विषय करती है उसमें अपना अस्तित्व समाप्त करती है, त्रिकालीय द्रव्य स्वभाव में ही वो अस्तित्व को देखती है, वो अवलंबन करती है, वह उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती है, परे यानी हस्ते को नहीं जानते, सर्जते एक समय की पर्याय में मेरा पद नहीं है, अपना पद नहीं है, ये अध्यात्म दृष्टि है, इंद्र दृष्टि है, पर यही सत्य दृष्टि है। जबकि सम्यक ज्ञान दृढ़गुण पर्याय तीनों में साथ लेकर के अस्तित्व को पूर्ण करता है। दृढ़गुण पर्याय उत्पाद ध्रुव युक्तम सब लेगा, ज्ञान प्रदान कथन है, ये श्रद्धा प्रदान कथन नहीं है। ज्ञान की शैली क्या, संधान की शैली क्या, और दोनों में परमार्थ क्या, आत्मकल्याण कैसे, फिर ये निकालना है। ये तो शैली की समझ होगी, तो उनमें से हमारा कल्याण हम कैसे कर लें, ये आगे की बात होगी प्रयोजन की। वहां तक नजर नहीं पहुंचे वहां तक आत्मकल्याण होने वाला नहीं है, प्राय वाद विवाद होगा, या तो समझ करके समझ लिया इसकी बात हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ, बस ये समझता हूँ उसमें ही पूरा के पूरा अटक गया। जानकर तथा आत्मा ने आत्मा को निश्चल स्थापित करके, अच्छी तरह स्थापित करके, विचलित नहीं होने उस तरह स्थापित करके, सदा सर्व और एक ज्ञान आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। आत्मा ने आत्मा को स्थापित करके, मैंने आत्मा रूप परिणमन करके, जो आत्मा अवलंबन भूत विषय है दृढ़ स्वभाव, उस आत्मा रूप परिणमन करके, जान करके ऐसा परिणमन करना चाहिए। जान दिया इसमें कोई दम नहीं है, वो तो परलक्ष ज्ञान में जाना जाता है। ऐसा स्थापित करके सदा सर्वोपर एक ज्ञान गण आत्मा ही है, जब स्थापित किया तो क्या अनुभव हुआ, अवतरण चिन्ह कर दिया है। इतना जो वचन है, सदा सर्वोपर एक ज्ञान गण आत्मा है, उसमें निर्विकल्प अनुभव दिया है, क्योंकि वहां तो सदा सर्वोपर एक आत्मा ही आत्मा है, दूसरा कुछ है नहीं है, इसका विकल्प भी नहीं है। अरे इनके भेद का गुण, गुण भेद का पर्याय, भेद का विकल्प नहीं है तो दूसरे का तो विकल्प होगा ही। जैसा भी विकल्प स्वरूप है, ठीक वैसा ही वैसा परिणाम हो गया, आत्मा मय परिणाम हो गया। इस प्रकार देखना चाहिए, इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। एक कलश में कितना अमृत भरा है, अच्छा है कि रचना करने वाले भी अमृत है, अमृत चंद्र है, अमृत क्या है तो अमृत चंद्र है, जिसमें से अमृत निर्जलता है उसको अमृत चंद्र कहने में आता है। कि हमारे श्रीमुख से मुखार बिंद से ये अमृत जलता है, ऐसा लिया है, खुद कहते हैं ऐसे कि हमारे मुखार बिंद से अमृत जलता है, क्योंकि ये वाणी निकलती है जिसको स्पर्शित हो जाएगी उसका मरण होने वाला नहीं है। अमृत अमृत को पी लिया, वाणी को पी लिया तो अमृत को पी लिया उसने, मरने वाला नहीं आगे जाकर के। बहुत प्रसिद्ध कलश है, बहुत रसना है, इस प्रकार देखने आना चाहिए, इस प्रकार अनुभव कर लेना चाहिए। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति करके वो तो है ही, जो परलक्ष है उसको मिटा देना है, उनकी बात है, उदय परलक्ष है उसको मिटा देना है। जो ज्ञानानुभूति चल रही है उसको आविर्भूत करते हैं, आत्मानुभूति हो जाएगी, यानी दृढ़ का आश्रय हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्वतः हो जाएगा, और एक विज्ञान जन निर्विकल स्वरूप आत्मा का अनुभव रह जाएगा। बस सदा सर्वदा आत्मा ही आत्मा है, विज्ञान घन ज्ञान घन आत्मा, जिसमें परद्रव्य और परभाव का प्रवेश हो नहीं सकता है, ऐसा घनिष्ठ पदार्थ है उसको ज्ञान घन कहने में आया है, ज्ञान घन कहते हैं, आनंद घन भी उसको कहने में आता है। उस प्रकार देखना चाहिए, जाने अनुभव करना चाहिए। बात संक्षेप में है, तो पहले संकेत दर्शन को प्रदान करके कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं। यहाँ पर 14 गाथा में संकेत दर्शन की प्रधानता से बात कर रही थी, अब 15 गाथा में ज्ञान की प्रधानता से हो के वो बात चलेगी। जो गुद स्पष्ट वाली बात है, वही बात यहाँ ज्ञान की प्रधानता से कहते हैं कि शुद्ध नहीं विषय स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा की अनुभूति है, शुद्ध नहीं के विषय स्वरूप आत्मा की जो अनुभूति है, शुद्ध नहीं द्वारा जो अनुभव किया जाता है ऐसा आत्मा है, यही सम्य ज्ञान है, यही आत्मा भी मुख ज्ञान है। सम्यक मैंने आत्मा भी मुख है, यानी सम्यक होने से कहीं कुछ किसी भी प्रकार से उसमें अवगुण पाया नहीं जाता, ऐसा है, ऐसा सद्गुणात्मक है वो सम्यक है, आत्मगुणात्मक है वो सम्यक है, इसको सम्य ज्ञान कहते हैं। इसमें यही परस्पर है वो सूत्र करता आता है, इसके तक आगे
आती सुधावर